ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से, गीता का सार अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 32। यदिच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमित्रिशम्। हे पार्थ, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हित्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, ऐसे करके वो श्लोक अर्जुन प्रथम अध्याय बोलते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं जीतवा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, इनको जीत करके हारूंगा मरूंगा तो स्वर्ग की प्राप्ति करूं तो वो अच्छा है कि इनको जीत करके इस राज्य को पाना वो श्रेष्ठ कर श्रेष्ठ है। तो अर्जुन इस धर्म से अनभिज्ञ नहीं थे, अनभिज्ञ समझते हैं, अनभिज्ञ का अर्थ है अनजाने नहीं थे कि ये जो युद्ध है इस करके मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर भी वो कंफ्यूज हो रहे थे कि ठीक है धर्म युद्ध करता हूँ तो मैं स्वर्ग की प्राप्ति करूंगा, लेकिन गुरुजनों को मारूंगा तो पाप लगेगा ना, धर्म कहाँ से हो गए, इसमें कंफ्यूजन था। ये क्लियर था कि ये पता था कि क्षत्रिय युद्ध करने जब धर्म के अनुसार युद्ध करते हैं तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन उनको यही डाउट था कि धर्म के अनुसार कर रहा हूँ क्या, मैं तो राज्य प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे अपने गुरुजनों को मारना पड़ेगा। हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि भक्त लोग को दिक्कत ये होती है कि धर्म क्या है, इसका निर्णय कैसे किया जाए। ऐसा नहीं होता कि अधर्म और धर्म के बीच सोचते हैं, धर्म क्या है उसमें भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अपर धर्म है जो आपका शारीरिक धर्म है, दूसरा कौन सा धर्म है, पर धर्म है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाती है, तो उसका बल्कि सोच लेता है क्या करूं यहाँ पर। खैर यहाँ पे तो अभी पर धर्म की बात आ ही नहीं है, अभी तो अपर धर्म में ही चल रहा है, क्षत्रिय धर्म को पालन किस प्रकार से किया जाए। अर्जुन ने कभी इतने बोला था कि मेरे आत्मा की उन्नति कैसे होगी, जो भी डाउट्स थे उन्हें इस बारे में नहीं बोला था, उन्हें यही बोला था कि ये मारे जाएंगे तो हमारे कुल धर्म की रक्षा कैसे होगी, तो क्षत्रिय धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने बात मोड़ दी आत्मा की तरफ। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। ये पहली लाइन है, ये भक्त के जीवन में बड़ी आसानी से होने लगती है जब वो देखते हैं कि भौतिक जीवन में मैं कुछ प्राप्त कर रहा हूँ उससे मेरा कुछ लाभ तो हो नहीं रहा, तो मैं क्यों उसमें इतना प्रयास करूँ। जो लोग भक्ति करते हैं देर सवेर उनको ये अनुभूति होने लगती है। क्या है भगवान श्लोक आते हैं हम लोग, विफल सेवनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। थोड़े से सुख के लिए मैंने कृपण लोगों की सेवा करी, कृपण का मतलब होता है कंजूस, जो आपसे बहुत सेवा लेना चाहते हैं और देना बहुत कम चाहते हैं। तो ऐसे तो भौतिकतावादी लोग भी होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हमारी इंद्रियां तो होती ही हैं, इंद्रियां बहुत थोड़ी सेवा मतलब सुख देती हैं और सेवा बहुत अधिक ले लेती हैं, होता है ना, और उस सुख के लिए व्यक्ति अपना पूरा मानव जीवन व्यर्थ कर देता है। चपल सुख लव लागी रे, और अच्छा भजन है इस पर सुगाना चाहिए। तो ये एक भक्त के जीवन में होने लगता है, इसे कहते हैं वैराग्य। जब मुझे केवल पहली बात तो शरीर ही बहुत भर्सना करने योग्य है, लोग सेंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि शरीर में बदबू आती है ना, तो शरीर में कुछ अच्छा है नहीं, लेकिन अभी शरीर में है तो कैसे हम लोग भगवान की अधिक सेवा कर सकें ये सोचना चाहिए व्यक्ति। इसके लिए शरीर धारण करना चाहिए, अदरवाइज शरीर को दोबारा प्राप्त करने का विचार बहुत बड़ी मूर्खता का द्योतक है। द्योतक समझते हैं आप, द्योतक मतलब सूचक, इंडिकेशन। कुछ लोग बोलते हैं दोबारा जन्म लेंगे, क्या दिक्कत है, दोबारा दोबारा नहीं करेंगे, 16 माला 4 माला कर रहे हैं, हम तो इसमें खुश हैं, दोबारा जन्म लेंगे तो क्या दिक्कत है। हमारे एक हैं जान पहचान वाले, वैसे बोलते हैं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती दोबारा जन्म लेने में। उसका मतलब वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि मल मूत्र के ढेर में दोबारा आने में मुझे क्या दिक्कत है। तुमको बोलो फिर तो घर में केवल टॉयलेट बनाना चाहिए, टॉयलेट में रहना चाहिए, और एसी हॉल वैसे बनाने की क्या जरूरत है, टॉयलेट में रहना किसको अच्छा लगता है। तो लिटरली हम लोग चलते फिरते टॉयलेट में रह रहे हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं अब, है ना। और उस टॉयलेट का हम करियर बनाना चाहते हैं, आप बताइए कितना बड़ा ज्ञान है। अब कोई कुछ व्यंग नहीं कर रहा हूँ, व्यंग में मत लीजिएगा इसको, लेकिन बहुत सच्चाई है। करियर में क्या मिलेगा, बहुत ही जगह पर सब लोग करियर बना रहे हैं, क्या मिलेगा करियर में, पर्क्स क्या मिलेंगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा ये सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, और बीच बीच में बोनस क्या मिलते हैं, आदि भौतिक कष्ट, आदि दैविक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट। लिटरली वी आर इन अ फ्राइंग पैन। वो अलग बात है कि हम लोग कहते हैं हम तो संतुष्ट हैं, एक बार प्रभुपाद से बोला हम तो संतुष्ट हैं, तो प्रभुपाद बोले संतुष्ट तो गधा भी होता है। और आप देख सकते हैं होटल में आप जाएंगे तो कैसे सुअर लोग बड़े आराम से 5-6 पिल्ले घूम रहे हैं, पिल्ले बोलिए जो भी बोलिए, खूब संतुष्ट, खूब मोटे ताजे लग रहे हैं। सही में व्यक्ति को घृणा हो जानी चाहिए ना, इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ देव बोलते हैं क्या वो विड भोजाम, ये मल खाने वाले सुअर को भी सब भोग मिल रहे हैं, क्यों उसके पीछे जा रहे हैं। ब्रह्म सुख की प्राप्ति करो, भगवान की भक्ति को सुख की प्राप्ति करो, और वो तभी मिलेगा जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, या कह सकते हैं हमारा हृदय शुद्ध होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वे अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक, सॉरी अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वे अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाण ही प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादिशितम शितिम धर्मेण पालेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। इस तरह की शिक्षाएं क्यों दी गई हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा का अर्थ क्या है। हम सब जानते हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य या जो शूद्र है, ये जीवात्मा के द्वारा अर्जित गुणों के कारण उसका एक स्वभाव होता है। समझते हैं इस बात को आप लोग, तमोगुणी लोग शूद्र होते हैं, तमोगुणी रजोगुणी मिक्स लोग वैश्य होते हैं, रजोगुणी लोग क्षत्रिय होते हैं, सत्वगुणी लोग ब्राह्मण होते हैं। तो उनको इस प्रकार के इंजंक्शन दिए जाते हैं शास्त्र में, सभी को दिए जाते हैं, ताकि उस स्थिति में रह के वो धीरे धीरे प्रगति कर सके, समाज में व्यवस्था बने। लेकिन इससे निस्त्रय गुण होने का अर्थ है कि परधर्म का आश्रय ले व्यक्ति, समझ में आ रहा है, इन व्यवस्थाओं में रहते हुए भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे और उससे उसका आध्यात्मिक स्वभाव प्रकट होगा। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति में जब कोई व्यक्ति कर रहा है, किसी की शादी हो जाती है तो पत्नी अपने पत्नी का जो कर्तव्य है वो भूल जाए, या पति अपने कर्तव्यों को भूल जाए, लेकिन परधर्म को ना भूले तब उसका जीवन सक्सेसफुल है। जनरल टेंडेंसी क्या होती है, परधर्म को हम लोग ताक पे रख देते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब ताक मतलब साकार होता है, शेल्फ के ऊपर रख देते हैं परधर्म, क्योंकि इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती, होता है कोई परधर्म के बारे में चर्चा। तो जब परधर्म के बारे में चर्चा होगी नहीं तो उसका ताक पे चले जाना स्वाभाविक है। और इस चीज को आप सब लोग अनुभव करते हैं कि जितना हम जिन विषयों के बारे में सुनते हैं वही हमारी चेतना बहने लग जाती है, होता है ना। आप करियर के बारे में बात करने लग जाए तो करियर के बारे में सोचता है, आप किसी धार्मिक गुरु के पतन के बारे में बात करने लग जाए तो उसके बारे में चेतना चली जाती है। आप देखिए चेतना लिटरली हमारी बिल्कुल पानी की तरह बहती है, जहाँ जहाँ बातें चर्चा वैसी वार्ता होती है वही बहने लगती। तो अब क्योंकि भौतिकतावादी लोग संग रहेंगे तो कभी वो परधर्म की चर्चा करेंगे भी नहीं और अपर धर्म की चर्चा नहीं कर सकते। आप लोग की चर्चा होती है ब्राह्मण का कर्तव्य ये है, क्षत्रिय का कर्तव्य ये है, मैं वैश्य हूँ ये कर्तव्य, कोई चर्चा नहीं होती। तो फिर हम लोग कहाँ सब श्लोक कहाँ सुनते हैं व्यक्ति। तो इस प्रकार से व्यक्ति को भक्तों के संग में आके परधर्म की चर्चा में नियमित रूप से संलग्न होना चाहिए। जैसे सुबह शाम खाते ना, इज़न्ट इट, ऐसे ही सुबह शाम, ऐसे तो नहीं बोले सुबह खा लेना आप दोबारा क्यों बोलना शाम को खाने का। सुबह शाम दोनों समय हरि कथा और हरि नाम का कीर्तन होना बहुत आवश्यक है हमारी चेतना को फिक्स रखने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा जिसके द्वार उसके लिए खुले हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। एक प्रिंसिपल है कि धर्म करने में कितना भी कष्ट हो धर्म करने से हमेशा लाभ होता है। आपने एक श्लोक सुना है, धर्म रक्षति इति रक्षता, बड़ा इंटरेस्टिंग है। धर्म जैसी चीज़ आपको टेंजिबली दिखती नहीं है कि धर्म है, मतलब है क्या, लेकिन समझते हैं जब धर्म के नियमों का पालन करते हैं तो फिर आगे वही धर्म का जो व्यक्ति किया रहता है उसकी वजह से सुख समृद्धि आती है, उन्नति होती है। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग बहुत सारी क्रियाओं को कर लेते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। कारण क्या है, पहले उनने पुण्य किया, धर्म किया। इस एग्जाम्पल को आप बहुत ईजी चीज़ है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझाऊँगा। सीलो समझते हैं, SILO, सैलो मतलब होता है एक बड़ा सा वेसल होता है ऊपर बर्तन और नीचे से उसमें छेद होता है, तो जो चीज़ ऊपर से डालोगे वही चीज़ नीचे से आएगी। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, अब वो अच्छे कर्म कर रहा है ऊपर से, तो उनको नीचे सामने उसके लाभ प्रकट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो उससे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति भी में आ भी गया और वो बहुत अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसके पहले किए गए दुष्कर्मों की वजह से वो थोड़ा बाहर निकलने से कहना चाहिए। लेकिन अगर भक्ति करता रहता है तो आगे जाकर फिर वो बहुत अच्छे से स्थित हो जाएगा और ये हम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस, समझ में आया बात को, किसकी बात कर रहा था मैं? सिलो, साइलो, साइलो मतलब ऊपर एक कंटेनर है उसमें नीचे से आप नल लगा दीजिए, जैसे दूध के बर्तन होते हैं हम देखते हैं ना, जो चाय वाले चाय पीते हैं ना, जब आप देखेंगे ट्रेन में चाय पीसते हैं तो वो चाय नीचे से निकलती है ऊपर से भरी रहती है, ऊपर से चाय डालती नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वही उदाहरण से आप समझ लीजिए। तो पहले चाय भरी तो ना उसमें चरणामृत बाहर आ जाएगा, अब बोले चाय चरणामृत मान लीजिए चरणामृत 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 था ना वो निकालेगा तो चरणामृत आ जाएगा बाहर। ये बात बहुत सिंपल सी लग रही है लेकिन अपने भक्ति के जीवन में आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के पहले का बैकअप कुछ और है। किसी ने पहले बहुत भक्ति करी तो देखेंगे बड़ाबड़ बड़ाबड़ भक्ति कर रहा है, कुछ ने थोड़े बुरे कर्म किए हैं और अब भक्ति में आया है तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत आएगी, कुछ कष्ट आएगा, लेकिन फिर वो एक बार भक्ति का प्रवाह चालू हो गया ऊपर से तो फिर सफाई हो गई। धैर्य से भक्ति करते रहना चाहिए। कोई प्रश्न है जी? एक श्लोक और देखेंगे। अथ चेतत्वमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। तो अब भगवान इनकी इस बात का खंडन कर रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि गुरुजनों को तुम वध करोगे तो पाप लगेगा, लेकिन वहाँ पाप नहीं लगेगा, क्या करने से पाप लगेगा ये देखो। बड़ा अच्छे स्टाइल से भगवान प्रीचिंग कर रहे हैं, पहले बोल रहे हैं क्या पुण्य मिलेगा तुम, फिर बोलेंगे कि तुम अगर नहीं करोगे तो क्या पाप लगेगा। तो जरा देखिए, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने देखी कि युद्ध जीतने की बात नहीं कर रहे भगवान, क्या बात कर रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग है ना। भौतिक जगत में अपर धर्म का आश्रय जो हम ले रहे हैं, आश्रय नहीं कहना चाहिए, अपर अधर्म का भी हम पालन कर रहे हैं तो भी हमसे खाली कर्तव्यनिष्ठ होने की अपेक्षा की जाती है। क्या करने की अपेक्षा की जाती है, अपना कार्य कीजिए। और भक्ति में तो और ज्यादा होता है क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, खाली प्रयास हमारे हाथ में। कितना अच्छा है भाई, अगर आप वाकई देखें तो आपको सारी चिंता से मुक्त कर दे। केवल प्रयास हमारे हाथ में, हम नाम जप कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बस यही करना है आपको। अब वो कब शुद्ध भक्त बनेंगे, कब आपके इसमें अष्ट सात्विक विकार आएंगे या जो भी आप सोच लीजिए, वो सब भगवान का हृदय के, हमें नहीं सोचना उसके बारे में, इधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपना कर्तव्य करें, अपनी भक्ति ठीक से करें, भगवान के धाम कब पहुंचेंगे भगवान के ऊपर। Does it make sense? अभी एक भक्त ने मुझे भेजा था SB ग्रुप में, शायद आपने देखा होगा, तो प्रभुपाद जी का एक अच्छा कोटेशन है, बोले नित्यानंद प्रभु भी पहली बार में जगाई मदाई का उद्धार नहीं कर पाए। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी, वो भी पहली बार में नित्यानंद जगाई मदाई का उद्धार नहीं कर पाए। तो हम प्रचार करने जा रहे हैं, हम लोग भक्त बनेंगे नहीं बनेंगे, हमारी बात को सुनेंगे नहीं सुनेंगे, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी सक्सेस इसलिए है, इस बात में है कि हमारी इंटेंशन भगवान को प्रसन्न करने की होनी चाहिए, और उसको जगत में कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर आपकी इंटेंशन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, मैं रोक सकता हूँ? आप कल से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप मत करना, ऐसा हो सकता है? तो बोले मारा गला काट दूंगा मैं। पर हिरण्यकश्यप नहीं कर पाया, प्रहलाद सिंह, तो कोई किसी की पास ताकत नहीं, तो प्रसन्नता कृष्ण का स्मरण मत करना। डर कोई रोक सकता है? कौन रोक रहा है? हम खुद अपने आप को रोक रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हम इससे सीख रहे हैं। और हमारा कर्तव्य क्या है? अगर हम भक्ति के बारे में कुछ जानते हैं तो प्रचार करने का, लोगों को बताने का हमारा कर्तव्य है। वो होंगे नहीं होंगे, कितना होंगे, उस पर हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिस्पॉन्सिबल हो ना, हमें कृष्ण भावना को ऐसे प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए ताकि लोग समझ सकें, अप्रिशिएट कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ करने के बाद वो कब भक्त बनेंगे वो हमारे हाथ में नहीं। ठीक है, देखिए तात्पर्य। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। हो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कीर्ति की हानि होगी। जो व्यक्ति कीर्तिवान होता है उसके लिए कीर्ति की हानि होना बहुत बड़ी बात है। है ना इंटरेस्टिंग, मान लीजिए कोई व्यक्ति शिव जी से युद्ध करके आया है और यहाँ पे दो चार गुंडों से युद्ध करना हो तो कहते हैं क्या युद्ध करूंगा, इससे तो अच्छा था मैं संन्यास ले लूं, तो हंसी का पात्र हो जाएगा ना। जो व्यक्ति शिव जी से युद्ध करके आया, निवाट कवच जानते हैं आप? निवाट कवच कौन थे? निवाट कवच, हाँ क्यों बोला? ऐसे हाँ बोल दिया। जैसे मैंने देखा है कि बहुत बार क्लास में कुछ बहुत लोग सो रहे होते और कॉन्स्टेंटली हाँ हाँ करते रहते हैं, हाँ कहते हैं हाँ मैं सो रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं। लेकिन भी अरे भाई समझ में नहीं आया तो पूछो। तो निवाट कवच थे, एक राक्षस थे, असुर थे, तो उनको मारने के लिए अर्जुन इंद्र सापे हाँ इंद्र के पास गए, तो अकेले ही सबको मार दिया था। इतने शक्तिशाली थे जिनको इंद्र भी नहीं मार सकते थे, अकेले अर्जुन ने मार दिया। मैं जब ये बोलने लगता हूँ तो इतना उत्साह आता है, अर्जुन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब रियली पावरफुल। महाभारत में आता अकेले ही मार दिया सबको, खत्म करके आ गए। अब वो व्यक्ति क्या कह रहा है, अब तो इनसे मैं मारूंगा, मार नहीं सकता, युद्ध नहीं करूंगा, ये प्रभुपाद जी संबंध में कोटेशन देते हैं, कहते हैं बंगाली कोटेशन कुछ देते हैं, शायद आपको पता हो, कहते हैं कि एक डांसिंग गर्ल है, मतलब नाचने वाली, नाच प्रस्तुत करना है, स्टेज पे आ जाए, अब वो शर्मा रही है मैं डांस करूं कि नहीं करूं। अरे भाई तुम डांस करने वाली हो, अब घूंघट डालने से क्या फायदा, डांस करो, डांस करने वाली हो, डब स्टेज पे आ गई तो अब बोले मैं क्या करूं, डांस करूं कि नहीं करूं, ऐसे करके कुछ। अब ऐसे जानते हो लोगों को, नाचते ना पा रहे पता नहीं ऐसे कुछ था। हाँ तो बंगाली में ऐसे कहावत है कि डांसिंग गर्ल डजंट वांट टू डांस ऑन शी कम्स ऑन द स्टेज। शिकारी के विष में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपातास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वे एक महान योद्धा हैं। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस बारे में मुझे पता नहीं है, मतलब होगा महाभारत में, लेकिन मुझे इस पास टाइम का मुझे पता नहीं। लेकिन ये जरूर पता है कि एक बार उनकी परीक्षा ले रहे थे द्रोणाचार्य, उन्होंने बोला कि वहाँ चिड़िया क्या दिख रहा है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भगवान प्रभु गुरु जी महाराज आपके चरण दिखाई पड़ रहे हैं, कहते हटो यार हटो यार गुरु जी आपके चरण दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहते हैं हटो तुम्हारे पास तुम एम नहीं कर सकते। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य सब लोग आते हैं, तो बोलता है मुझे चिड़िया भी दिख रही है आसपास, पत्तियां भी दिख रही है, तो हटो यहाँ से तुम भी। अर्जुन को बोलते हैं तो कहते हैं मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, चिड़िया दिख रही है चिड़िया भी नहीं दिख रही है, लेकिन केवल आँख दिख रही है। और ये गुरु को बहुत प्रसन्न करता है। गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, ऐसे करते रहो। गुरु महाराज पूछे बेटा मंगल आरती जा रहे हो? नहीं महाराज, गुरु महाराज की जय हो। ऐसे गुरु महाराज प्रसन्न नहीं होने वाले, उनकी शिक्षाओं में एकदम फोकस होकर करना चाहिए। जैसे हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु भाई यहाँ बैठे हुए, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज ये नहीं बोलते हैं आपको 16 माला करना है। क्या भाव थी बताओ, पहली भाव क्या थी याद है? कि मैं 16 माला का जब जितना ध्यान पूर्वक हो सके संभव मेरे लिए वो करूंगा, क्योंकि अदरवाइज खाली 16 माला का नियम होता तो कोई भी आप कार में चलते हुए ऐसे करते हुए सोते सोते भी कर सकते हैं। तो सोचिए कल आपके पास मौका है गुरु महाराज को प्रसन्न करने के, उनकी रीली सही मामलों में जय करने के। हम सो सो के जब करेंगे तो टेंशन की बात ही क्या है, कहाँ से टेंशन आएगी। तो ये केवल गाने की बात नहीं है, गुरु मुख पद्म वाक्य, मैं इसमें थोड़ा सा कठोर ही बोलूंगा, इट इज नॉट सिंपली मैटर ऑफ सेइंग गुरु मुख पद्म वाक्य। एवरी डे वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली एवरी मोमेंट, हर क्षण हमारे पास ये मौका है जो हम बोले गुरु मुख पद्म वाक्य। हम जो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेरे हाथ दिखा रहा उसका मतलब मोबाइल पर भी कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इज इट प्लीजिंग टू गुरु? अगर वो सामने होते तो क्या उन्हें पसंद होता? इज दैट फाइन? और उसके अनुसार हमारी प्रगति होगी या नहीं होगी। But that is the meaning of being focused. इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह, ये भी इंटरेस्टिंग है, प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था, जैसे कोई मैं बोलूं मैं IIT कानपुर से पास आउट हूं, बोले प्रभु जी a² + b² = c² वाला को रूट पता है? आपको डाउट होगा, अरे एक भक्त मुझे मिले, थोड़ा सा वो जिरह कर रहे थे और बड़े अहंकार में बात कर रहे थे, फिर बोले प्रभु जी आप जानते नहीं मैं भक्ति वैभव हूँ, मैं आपको डिग्री दिखाऊंगा अपनी भक्ति शास्त्री। हमने कहा आप डिग्री दिखाओगे तो मुझे उस डिग्री पे अश्रद्धा हो जाएगी, इस तरह की डिग्री प्राप्त करने के बाद इस प्रकार का आप आचरण कर। एक बात हमारे महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते, कहते हैं पीपल विल नॉट रिमेंबर, पीपल डोंट डील विद यू हाउ यू वॉट यू हैव डन बट वॉट यू आर। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या किया था, अभी आप क्या हो उसके अनुसार आपसे वो आदान प्रदान करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? कितनी जल्दी भूल जाते हैं ना, हमने अच्छा किया बुरा किया कुछ भी भूल जाते हैं। जैसे बुरा भी किया हो तो भी भूल जाते हैं, अभी आप अच्छे हो तो आप उस और डील आपसे वैसे डील करेंगे, होता है ना। मेरी गाड़ी कितना खराब था, जैसे साधु बन गया सब लोग उसको अनाज लेके आने लगे। अद्भुत है ना जगत, कितना अद्भुत है कि वो एक निशंस शिकारी था और भक्त बन गया। तो आपका प्रमाण पत्र आप खुद जनरेट करते हो, आप समझ रहे मेरी बात? भक्त के रूप में पर्टिकुलरली, साधक के रूप में पर्टिकुलरली, वो दूसरे को किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बोल रहे हैं अपना प्रमाण पत्र को खारिज मत करो, तुम इतने बड़े, ये प्रमाण पत्र उन्होंने खुद ही बनाए थे कि नहीं बनाए थे? शिव जी को हराया, निवाड़ कवच को हराया और जगह जगह ये विराट युद्ध में सबको हराया, तो विश्व प्रसिद्ध योद्धा केवल गुरु जी के स्टैम्प से नहीं थे, उनका आशीर्वाद था, लेकिन गुरु जी ने देखा उसकी निष्ठा कितनी, इसलिए आशीर्वाद आया। बात प्रभु जी समझा रहे थे वृंदावन चंद्र प्रभु की, आशीर्वाद रोम से निकलता है, वाणी से नहीं निकलता। वाद मतलब बोलना, रोम से कैसे निकलेगा? जब सेवा की भावना होगी, निष्ठा परायण होगा, सेवा परायण होगा तो अपने आप गुरु का आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर होता है। केवल मांगने से ही नहीं चलेगा, मांगना चाहिए लेकिन मांगने से नहीं चलेगा। गुरु जी कृपा करिए कृपा करिए, और सुबह उठे नहीं मंगल आरती के लिए, जप ही नहीं करें, भक्ति नहीं करें, तो कैसे कैसे कृपा होगी? ओके, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। चलो स्टॉप हियर ना।